मनुष्य एक ज्ञानी प्राणी है। सभी प्राणियों में सबसे अधिक ज्ञान संपन्न माना जाता है भी। उसे अपने बौद्धिक ज्ञान का अच्छे से अच्छा उपयोग करना चाहिए, लौकिक जीवन की सफलता के लिए, सांसारिक जीवन की सफलता के लिए अपने बुद्धि को कुशाग्र बनाना चाहिए, उसे खूब समझदार बनाना चाहिए ताकि जीवन में सफलता आए। लेकिन जहाँ तक भीतरी ज्ञान का सवाल है, जहाँ तक अध्यात्म का सवाल है, अध्यात्म माने अपने भीतर का ज्ञान, अपने भीतर की सच्चाई को जानकर जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ये अध्यात्म शब्द भी बदल गया। लंबा समय होता है, 2500-2600 वर्ष बीतते बीतते अर्थ बदल जाते हैं। आज तो जब कोई आध्यात्मिक बात की चर्चा करे तो अध्यात्म का मतलब आत्मा, परमात्मा, इस तरह की दार्शनिक मान्यता को अध्यात्म, अरे लेना देना नहीं इस बात से। उन दिनों के भारत की जनभाषा में अध्यात्म कहते थे अपने भीतर, बहिद अज्ञत, अपने भीतर की सच्चाई को जानना, अपने भीतर की सच्चाई को अनुभूतियों के स्तर पर जान लिया तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बात वही है, हम विज्ञान के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर खूब समझते हैं ये सारा संसार अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, परिवर्तनशील है, जो जन्म लेता है वो देर सवेर मृत्यु को प्राप्त होता ही है, जो उत्पन्न होता है देर सवेर विनष्ट होता ही है। ये संसार का नियम है, उत्पन्न होना, नष्ट हो जाना, उत्पन्न होना, नष्ट हो जाना। ये बात बुद्धि के स्तर पर समझने जरा भी कठिन नहीं है और सभी समझते हैं, लेकिन इसका असर, जिसे अध्यात्म कहते हैं, अपने भीतर के मानस को सुधारने में इसका कोई असर नहीं होता, बहुत छिछला छिछला असर। एक उदाहरण से समझें, किसी का कोई प्रिय व्यक्ति गुजर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, अब उसके शव को शमशान भूमि में ले जाते हैं, चिता पर रखते हैं और आग जलाते हैं। वो व्यक्ति देख रहा है, क्या जीवन की अंतिम परिणति यही है? ये आदमी सब कुछ यहीं छोड़ गया, इसकी पत्नी, इसके बाल बच्चे, इसकी धन दौलत, कुछ भी इसके साथ नहीं गई, अरे शरीर भी नहीं गया, इसे भी जला दिया गया यहाँ पर। तो सोचता है आगे जाकर मेरी भी यही दशा होने वाली है, देर सवेर होने वाली है, तो मेरे शरीर को भी यूं ही ला करके शमशान भूमि में जला दिया जाएगा, न पत्नी साथ जाएगी, न बच्चे साथ जाएंगे, न धन दौलत साथ जाएगी, न आलीशान मकान साथ जाएगा, न ये गाड़ियां साथ जाएंगी, जीवन का यही अंत है। अरे फिर किस लिए हाय हाय करते हैं, किस लिए हाय हाय करते हैं, अंत में तो सब कुछ छूट जाने वाला है। हाय पुत्र, हाय संपदा, हाय मान सम्मान, हाय हाय करते हुए निकले तन से प्राण। देखो इस बेचारे का प्राण हाय हाय करते निकल गया, ऐसे ही मेरा प्राण भी हाय हाय करते निकल जाएगा। क्या हुआ, क्या लाभ हुआ इस हाय हाय का, ये कैसा जीवन है? बड़ा वैराग्य जागा, बड़ा ज्ञान जागा। कुछ देर के बाद शमशान भूमि से बाहर आया तो अपने एक भाई को देखता है जिससे उसके संबंध बिगड़े हुए हैं, बुरी तरह से बिगड़े हुए हैं। उसको देख करके वो सारा ज्ञान धरा रह गया। जब तक शमशान भूमि में था तब तक तो ये ज्ञान था। अरे काया ही तेरी नहीं और छुटसी हो निष्प्राण। तो इन भौतिक जगत में कुण तेरो नादान, कौन है तुम्हारा इस भौतिक जगत में कौन है? ये सारा ज्ञान जब तक वो शमशान भूमि में था तब तक ये सारा ज्ञान जागृत था। बाहर आया तो देखता है अपने भाई को जिससे संबंध बिगड़े हुए हैं, 36 के संबंध हैं, झगड़ा हो रहा है उससे, सिविल केस चल रहे हैं। क्रोध आता है, अरे कितने साल हो गए सिविल केस से कुछ नहीं होता, मुझे किसी तरह इसको फंसा करके इस पर क्रिमिनल केस करें तो इसे होश आएगा, तो बदला ले सकेंगे। इतना क्रोध जागा। एक कदम बाहर आते ही वो शमशान ज्ञान वहीं रह गया। शमशान ज्ञान है ना, बुद्धि के स्तर पर खूब समझा, भीतर तक नहीं समझ पाया, भीतर तक वैराग्य नहीं जागा। बुद्धि के स्तर पर तो समझते ही रहते हैं। कोई व्यक्ति धर्म सभा में गया, गुरु महाराज का प्रवचन हो रहा है, पंडित जी का प्रवचन हो रहा है, स्वामी जी का प्रवचन हो रहा है, और धर्म की इतनी गहरी बातें, ये सारा संसार अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, इसके प्रति राग जगा करके दुखी हो जाते हो, द्वेष चला के दुखी हो जाते हो, आसक्ति जगी के व्याकुल हुए, आसक्ति जगी के राग और द्वेष अपने आप दृढ़ होते चले जाएंगे, तुम्हारा दुख दृढ़ होता चला जाएगा, अनासक्ति का जीवन जीना चाहिए। खूब समझता है, ठीक ही है, कैसा दुख का जीवन जीता हूँ, इससे राग किया उससे राग किया व्याकुल हुआ, इससे द्वेष किया उससे द्वेष किया व्याकुल हुआ, इस व्यक्ति पर आसक्ति जगाई नष्ट हो गया व्याकुल हुआ, इस वस्तु पर आसक्ति जगाई नष्ट हो गई व्याकुल हुआ, ये सारा प्रपंच व्याकुलता ही व्याकुलता का प्रपंच है। बस बहुत हो गया, बहुत भुगत लिया, अब आसक्ति नहीं, मुझे अनासक्ति का जीवन जीना है, मुझे वीतराग का जीवन जीना है। खूब धर्म की बात समझ में आई। धर्म सभा समाप्त हुई, सभागृह के बाहर आया तो देखता, अरे मेरा जूता कहाँ गया, मेरा जूता कहाँ गया, अरे कोई उड़ा ले गया, कल ही तो खरीदा था, इतना कीमती जूता, इतना अच्छा जूता, अरे यहाँ के लोग कैसे चोर हैं, इनको जरा भी धर्म का ज्ञान नहीं है, मेरा जूता चुरा लिया। इतनी गहरी आसक्ति इस जूते पर, और थोड़ी देर पहले अनासक्ति की बात सोच रहा था, कुछ असर होता नहीं। धर्म को जहाँ केवल बुद्धि का विषय बना लिया, केवल प्रवचनों का विषय बना लिया, बोलने वाला बोलकर बड़ा खुश है, देखो हमने धर्म कितना अच्छा समझाया, और सुनने वाले सुनकर खुश है, देखो हमने धर्म को कितना समझ लिया, क्या समझा रे और क्या समझाया रे, अनुभूति से कुछ नहीं जाना ना। ये कोरा बुद्धि विलास और श्रुति विलास, वाणी विलास, श्रुति विलास, वाणी विलास, क्या मिला इससे? थोड़ी देर के लिए मनोरंजन हो गया, जाते हैं मनोरंजन के लिए, इधर गए उधर गए, चलो आज अमुक जगह धर्म सभा है, उस गुरु महाराज का प्रवचन है, उस पंडित जी का प्रवचन है, चलो सुन लें, थोड़ी देर मन बहलाएं, मन बहलाने के लिए हो गया धर्म, या बहुत हुआ तो बुद्धि विलास के लिए हो गया धर्म, अनुभूति पर नहीं आ जाएगा। अपने भीतर जानना है, अनुभूति से जानना है। अंजन माहि निरंजन देखो, ये जो शरीर है 3.5 हाथ की काया है, ठोस है, दिख रही है, ऐसी है, इसके भीतर निरंजन है, उसका कोई रूप नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रेख नहीं। वो सच्चाई क्या है? और वो सच्चाई ऐसी है जो अपने आप उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। जो अपने आप प्रकट हो रहा है वो निरंजन है, अपने आप प्रकट हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो वो अनित्यता की अनुभूति अपने भीतर जब हुई तो आपे आप निरंजन सोई, अंजन माही निरंजन देखो, देखने लगा अपने भीतर ये विद्या नष्ट हो गई। अब तो कहीं आंख बंद करके बैठे भी तो करो ध्यान किसी कल्पना का। हमारी परंपरा में ऐसी एक मान्यता है, हमारी परंपरा में ऐसी मान्यता है, जो मान्यता है बस उसका ध्यान कर रहे हैं। तो ये अनुभव तो नहीं ना, जाना कहाँ, केवल मान रहा है। बुद्धि के स्तर पर मान रहा है, श्रद्धा के स्तर पर मान रहा है, मान रहा है। मानने और जानने में जमीन आसमान का अंतर होता है, जाना नहीं, अपने भीतर सच्चाई को जानना है। और सच्चाई को जानने के लिए ही धर्म होता है, सच्चाई को जानने के लिए ही साधना होती है। ये जो शील की चर्चा की, ये जो समाधि की चर्चा की, समाधि केवल चित्त को एकाग्र करने वाली नहीं, सच्चाई को अनुभूति से जानते हुए चित्त को एकाग्र करना, अनुभूति से जानो, हमेशा मन भीतर रहे, काया के भीतर क्या हो रहा है उसे अनुभूति से जानो, कायस्थ बनो, काया में स्थित हो जाओ। निच्चंग कायगता सती, उस महापुरुष भगवान बुद्ध ने एक रास्ता दिया हमें, निच्चंग कायगता सती, काया के भीतर जो कुछ हो रहा उसके प्रति सजग रहो, उसे जानो, अनुभूति से जानो। पस्स कहते हैं अनुभूति को, अनुभूति से जानो। वैसे एक सांसारिक अर्थ होता है पश्यना माने देखना, पश्यति देखता है, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में पश्य के माने अनुभव करो, अनुभव से सच्चाई को जानो, तो बहुत से रहस्य खुलेंगे। ये सारा संसार अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, मेरा शरीर भी अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, ये नियम है प्रकृति का, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। अब अनुभव होगा ये सारा शरीर क्या है। ऊपर से ठोस ठोस लगने वाला शरीर, जैसे जैसे प्रज्ञा जागेगी, प्रज्ञा जागेगी, प्रत्यक्ष ज्ञान जागेगा, बुद्धि वाली बात नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान जागेगा, अनुभूति से जानेगा ये ठोस लगने वाला शरीर, देखें तो कितना ठोस है। अब वो अनुभूति द्वारा देख रहा है तो प्रज्ञा द्वारा उसका मन इतना शार्प हो जाता है, इतना सेंसिटिव हो जाता है कि बींद बींद कर, बींद बींद कर सच्चाई को भीतर से जानता है, और ऐसे जानता है कि उसमें सारा कुदरत का कानून सामने आ जाता है, विश्व का विधान समझ में आने लगता है, ऋत के नियम समझ में आते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ प्रज्ञा के लिए आगे जाकर ऋतंभरा प्रज्ञा शब्द का प्रयोग होने लगा, ऋतंभरा, ऋत के नियमों से भरी हुई प्रज्ञा। ऋत का नियम क्या है? ऋत का नियम यही है, उत्पन्न होना, नष्ट होना, उत्पन्न होना, नष्ट होना, अनुभूति द्वारा जान रहा है। और इस बींधती हुई प्रज्ञा से जानते 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 देखता है ठोसपना कहीं नहीं रहा, सारे शरीर में कहीं ठोसपना नहीं। विपश्यना के शिविर में आते आते कुछ दिनों के भीतर ही साधक इस सच्चाई की अनुभूति करने लगता है, स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जाना है। ये ठोस शरीर स्थूल सत्य है, और उसका विभाजन करते करते, विघटन करते करते, और गहराई और गहराई और गहराई, इतनी गहराइयों पर जा पहुंचा कि भौतिक जगत का सबसे छोटा पदार्थ, सबसे छोटी इकाई, जिसे अणु कहें, परमाणु कहें, उस महापुरुष ने उस महान वैज्ञानिक ने यह शब्द नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि ये तो उनसे भी छोटा, उनसे भी छोटा। सारा भौतिक जगत इसी से बना हुआ, और देखता है इसमें आठ बातें, इस इकाई में जिसे उसने एक शब्द दिया कलाप, इस कलाप में आठ बातें, चार भौतिक, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, और चार उनका अपना अपना स्वभाव, ये आठ मिलकर के एक कलाप हुआ। वो भी ठोस नहीं, केवल तरंगे ही तरंगे। इतनी शीघ्र गति से उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, अनुभूति द्वारा जान रहा है अपने भीतर जो अनुभूति द्वारा जाना। अरे बाहर भी यही हो रहा है, सबो पज्जलितो लोको, सबो लोको प्रकंपितो। हमारे देश का यह महान वैज्ञानिक, मानव जगत का यह महानतम वैज्ञानिक इस सच्चाई पर पहुंचता है बिना किसी साइंटिफिक एपरेटस के, बिना किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के, अनुभूति द्वारा देखता है। कंबशन वाइब्रेशन। अरे सारे संसार में, सारे भौतिक जगत में केवल उत्पन्न होना, नष्ट होना, उत्पन्न होना, नष्ट होना, इतनी शीघ्र गति से। तो अनुभूति से कोई कहता है कि एक चुटकी बजाऊं उतनी देर में अनेक शत सहस्त्र कोटि बार यह कलाप उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। क्या कह गया? शत सहस्त्र कोटि, एक के आगे 12 बिंदी लगाएं तो शत सहस्त्र कोटि, और सो भी अनेक अनेक शत सहस्त्र कोटि बार उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। सच्चाई है, अनुभूति से जानी है। इसी सच्चाई को पश्चिम के वैज्ञानिकों ने जाना, उनकी कोई निंदा नहीं है, वो अपने ढंग से अनुसंधान करते हैं। कैलिफोर्निया का, बर्कली यूनिवर्सिटी का फिजिक्स डिपार्टमेंट का हेड एक बड़ा साइंटिस्ट, उसने भी ये खोज की और ये जानना चाहा कि नन्ना सा सब एटॉमिक पार्टिकल कितनी बार उत्पन्न होता है, नष्ट होता है कितनी बार। उसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम रखा बबल चेम्बर। ठीक है, रखा बबल की तरह उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। उसको अपने इंस्ट्रूमेंट से गिन करके कहता है कि एक सेकेंड में एक के आगे 22 बिंदी लगाए। ये कहता है कि एक पलक झपके, एक चुटकी बजाएं, इतने में अनेक शत सहस्त्र कोटि, एक के आगे 12 बिंदी अनेक बार, दोनों एक सच्चाई पर पहुंचे। कितना बड़ा अंतर! एक अपने इंस्ट्रूमेंट्स के भरोसे, अपने बुद्धि के भरोसे इस बात को जानता है, समझता है, और दूसरा अनुभूति से जानता है। कितना बड़ा अंतर! ये व्यक्ति सर्वज्ञ बन गया, महाकारुणिक बन गया, धर्म जाग गया। कितनी करुणा! और वो व्यक्ति, उसकी निंदा नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए, हम समझे कि बुद्धि से जो ज्ञान जागा उसके मुकाबले प्रज्ञा से जो ज्ञान जागा, कितना बड़ा अंतर है। यहाँ पर विभिन्न देशों के लोग आते हैं, कैलिफोर्निया के भी लोग आए, उन्होंने ये सारी बात सुनी तो वहाँ गए, इस प्रोफेसर साहब से मिले और आके हमें बताया कि वो इतना टेंस रहता है, इतना तनाव में, इतना शॉर्ट टेम्पर्ड। वही सच्चाई था, वो भी पहुंचा। किस तरह पहुंचा? ये जो पहला एटम बम बना, उसके बनाने में उसका भी हाथ था। तो उसके मन में ये जिज्ञासा जागी कि ये मेरा पहला एटम बम जापान पर गिरे तो मैं देखूं इसका क्या प्रभाव होता है। तो जो हवाई जहाज वो एटम बम लेकर गया और उसने जापान पर डाला, उसको देखने के लिए वो साथ बैठा। अरे कहाँ तो इतनी बड़ी करुणा और कहाँ इतनी बड़ी हिंसा। केवल बुद्धि के ज्ञान से आदमी सुधरता नहीं, भौतिक ज्ञान हमें सुधार नहीं सकता, आध्यात्मिक ज्ञान, प्रज्ञा वाला ज्ञान, दुनिया बदल गई। इसलिए विपश्यना की जाती है, इसलिए विपश्यना में परफेक्ट होते हैं कि हमारा अपना ज्ञान जागे, अपना ज्ञान जागे, हमारी प्रज्ञा जागे। बड़ा कल्याण होगा, बड़ा मंगल होगा, स्वस्थ होगी, मुक्ति होगी, मुक्ति होगी।